From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत ब्रिगम यंग विश्वविद्यालय की सम्मिलित गायक मंडली द्वारा होगा. इसका प्रसारण बॉलनविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया जा रहा है. बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है.
President Henry B. Eyring,
अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजे के प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे.
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 183वें वार्षिक महासम्मेलन के द्वितीय सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं. अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन, जो कि इस महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं सत्र का संचालन करूं. हम सभी को जो यहां उपस्थित हैं, या टेलीविजन, रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से भाग ले रहे हैं, और जो विश्व के विभिन्न स्टेक केंद्रों में इस सम्मेलन को उपग्रह प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं. हम जनरल अधिकारी और जनरल पद अधिकारियों का इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करते हैं. इस सत्र का संगीत ब्रिगम यंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सम्मिलित गायक मंडली द्वारा रॉलैंड स्टैनली और रोसलिन हॉल के निर्देशन में होगा, और बोनी गुडलिफ आगर्जन ऑर्गन बजाएंगी. गायक मंडली जीसस द वेरी थॉट ऑफ द गाकर सभा का आरंभ करेंगी. फिर रविवार विद्यालय महाध्यक्ष भाई रसल टी ओसगुथोरोव प्रार्थना करेंगे. इसके बाद गायक मंडली डिड यू थिंक टू प्रे गाएगी.
Thank you. Our dear Father in heaven, we gather as thy saints.
Hey, प्यारे पिता, हम पुरातन दिनों के इस जनरल कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होते हैं और अपने दिल की गहराइयों से आपकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हैं. पिता, हम आभारी हैं कि जो ब्लेसिंग्स हमें आपसे और आपके सन जीसस क्राइस्ट से मिली, हम इस बात के भी आभारी हैं कि आपने पुनरुत्थान की कुंजी चर्च में फिर से स्थापित की है. हे पिता, हमें हिम्मत दे ताकि हम उन विश्वास पर अभ्यास कर सकें. पिता, हम अपने परिवार के साथ हमेशा रह सके. पिता, आपकी पवित्र आत्मा उन सब के साथ हो जो आज बोल रहे हैं. और उन सब की बात सुनो जो मिशनरी पूरी दुनिया में गॉस्पल प्रिंसिपल को पढ़ा रहे हैं. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन.
अब अध्यक्ष डिटलर एफ उड्रफ गिरजे के जनरल पदाधिकारियों और क्षेत्रीय सत्रों के समर्थन का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके पश्चात गिरजे के लेखा प्रशिक्षण विभाग के प्रबंधक निदेशक भाई रॉबर्ट डब्ल्यू कैचवेल वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगे। उसके पश्चात प्रथम अध्यक्षता के सचिव भाई ब्रुक पी हेज गिरजे के वर्ष 2012 के आंकड़ों का विवरण देंगे।
ये प्रस्तावित करते हैं कि हम थॉमस स्पेंसर मौसम को भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटकर्ता और अंतिम दिनों के संतों की यीशु मसीह गिरजाघर का अध्यक्ष का हेनरी बेनियन आयरिंग का प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डीटर फेडरिश उगडोर्फ प्रथम अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार का समर्थन करते हैं। जो कोई समर्थन करते हैं सुस्पष्ट करें, जो विरोध यदि कोई है सुस्पष्ट करें। ये प्रस्तावित करते हैं कि हम बॉयड केनेथ पैकर को 12 के प्रेरितों के परिषद के अध्यक्ष और इस परिषद के निम्न सदस्यों बॉयड के पैकर, एल टॉम पेरी, रसल एम नेल्सन, डैलन एच ओक्स, एम रसल बैलन, रिचर्ड जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हिल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेडनर, क्विंटल एल कुक, डी टॉट क्रिस्टोफरसन और नील एल एनसन का समर्थन करते हैं। जो समर्थन करते हैं कृपया सुस्पष्ट करें, कोई विरोध यदि है तो सुस्पष्ट करें। ये प्रस्तावित करते हैं कि प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों का और 12 प्रेरित जैसे भविष्यवक्ताओं, दिव्यदर्शी और प्रकटकर्ता का समर्थन करते हैं। सभी समर्थन करते हैं कृपया सुस्पष्ट करें, विरुद्ध यदि कोई है सामान्य चिन्ह से करें। एल्डर वाल्टर एफ गोंजालेस को 70 के परिषद की अध्यक्षता की सदस्यता से मुक्त किया जाता है। जो कोई भी आभार वोट देने को हमसे जुड़ना चाहता है कृपया सुस्पष्ट करें। ये प्रस्तावित करते हैं कि हम एल्डर ओलेसिस सोरारस 70 की परिषद की अध्यक्षता के सदस्य का को समर्थन करते हैं। सभी समर्थन करते हैं कृपया सुस्पष्ट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई सुस्पष्ट करें। ये प्रस्तावित करते हैं कि हम निम्न क्षेत्रीय 70 के सदस्यों को मुक्त करते हैं मई 1, 2013 से प्रभावित।
Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igonose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
those who wish to join in, as us in
expressing के उनके अद्भुत सेवा के लिए आभार व्यक्त करने में हमारे साथ जुड़ना चाहता है कृपया सुस्पष्ट करें। ये प्रस्तावित करते हैं कि हम आभार के वोट के साथ बहन एलन एस डेल्टन, मैरी एन कुक, एन एम डिब, युफ्तियों की जनरल अध्यक्षता से मुक्त करते हैं। हम उसी तरह से सारी युवतियों की जनरल बोर्ड से सभी सदस्यों को मुक्त करते हैं। सभी जो निवेदन में उनके अद्भुत सेवा के लिए आभार व्यक्त करने में हमारा साथ जुड़ना चाहते हैं कृपया सुस्पष्ट करें।
It is proposed that we sustain as new members of the first quorum of the 70, Edward Dubé, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, and as new members of the second quorum of the 70, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign. In view of his call as a member of the second quorum of the 70, we also release Brother Adrian Ochoa as second counselor in the Young Men General Presidency. Those who wish to extend a vote of appreciation may so manifest. It is proposed that we sustain the following as new Area 70s. Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor, please manifest.
जो समर्थन करते हैं कृपया सुस्पष्ट करें। कोई विरोध तो सुस्पष्ट करें। बॉनी ली ग्रीन ऑस्कर्स ये प्रस्तावित करते हैं कि हम बॉनी ली ऑस्कर्स युवतियों की जनरल अध्यक्ष से कैरल लुई फॉली मैकॉन की प्रथम सलाहकार के रूप और एवलन नील फुट मैरियट द्वितीय सलाहकार के रूप समर्थन करते हैं. जो समर्थन करते हैं सुस्पष्ट करें, कोई विरोध तो सुस्पष्ट करें. ये प्रस्तावित करते हैं कि हम दूसरे जनरल अधिकारियों शेखती सक्तर और जनरल सहायक अध्यक्षता जैसे वर्तमान में नियुक्त की गई है का समर्थन करें. जो समर्थन करते हैं कृपया सुस्पष्ट करें, कोई विरोध तो सुस्पष्ट करें. भाइयों और बहनों, आपके समर्थन वोट और आपके विश्वास और हमारे आधार पर प्रार्थना करने के लिए आपका धन्यवाद. हम नए बुलाहट को जनरल अधिकारियों और युवतियों की जनरल अध्यक्षता को सामने आने और स्थान ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं.
It's a long walk. As announced, Brother Cantwell.
जैसा घोषित किया जाता है, भाई कैंटवेल अब अंक परीक्षक की रिपोर्ट को पढ़ेंगे. उनके बाद भाई हेल्स द्वारा जो सांख्यिकीय रिपोर्ट पेश करेंगे.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
अंतिम दिनों के संत वैश्विक गिरजा करके पत्र मदर की ओर से प्रिय भाइयों, जैसे सिद्धांत और अनुबंध के 120वें भाग के प्रकरण द्वारा आदेश दिए गए हैं, गिरजा के दशमाचरण अधिकृत कोष के खर्चे के प्रबंध पर परिषद हो. ये परिषद प्रथम अध्याय 12 पदों के और अध्यक्ष धर्माचार्य से बनाई गई है. ये परिषद गिरजा विभागों प्रक्रिया धर्मोदेशक इकाइयों से संबंधित बजट को स्वीकृति देता है. गिरजा के सतत खर्चा कोष के अनुरूप और गिरजा की नीतियां और कार्य प्रणालियों के समानता के साथ बजट की स्वीकृति देता है. गिरजा अंक परीक्षक विभाग सभी लोगों को लेखों का और आवश्यक प्रणालियों के नियंत्रण के पर्याप्त कोष की रसीद खर्चे और गिरजे के अमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन करने की अनुमति देता है. गिरजा अंक परीक्षक विभाग सभी अन्य गिरजा के विभागों प्रक्रियाओं और सार्वजनिक लेखाकार कार्यकर्ताओं के प्रमाणित अनुमति भीतर अंकेक्षक के प्रमाणित जानकारी प्रणाली अक्षेक्षण प्रणाली और अन्य व्यवस्थित पत्र देने से स्वतंत्र है. गिरजा अंक परीक्षक विभाग की सलाह है कि सभी वस्तु संबंधी भागीदारी प्राप्त करने खर्चा करने और 2012 के लिए गिरजा की अमूल्य वस्तुओं का लेखा और उचित लेखाकार के अभ्यास के अनुसार के साथ देखभाल करने बजट अनुमति और गिरजा की नीतियों और कार्य प्रणालियों पर आधारित है. विनती से पेश किया गया है गिरजा अंक परीक्षक विभाग रॉबर्ट डब्ल्यू ए कैंटवेल मैनेजिंग डायरेक्टर.
For the information of the members of the church, the first.
गिरजा के सदस्य की सूचना के लिए प्रथम अध्यक्षता 31 दिसंबर 2012 तक गिरजे के विकास और प्रगति के संबंध में निम्नलिखित सांख्यिकीय विवरण जारी किया है. कुल चेकों की संख्या 3005, मिशन 347 के लिए जिले 591 और वार्ड संख्याएं 29,014 थी. गिरजे की कुल संख्या 1,47,042,473. नए बच्चे अभिलेख की शामिल किए गए और 2012 के दौरान 2032 में लिए. गिरजा सेवा प्रचारक संपूर्ण गिरजे के सेवा कर रहे हैं. 2012 के दौरान चार मंदिर कांसन सिटी मसूरी मसूलेस ब्राजील ब्रिंगहम सिटी यूटा और कैलगरी अल्बर्टा टेंपल को समाप्त किए गए थे। 2012 के दौरान दो मंदिर वेनेजुएला अर्जेंटीना एंड वोसले आइडोहा टेंपल को किया गया है। अंत के अंत पे कार्य कर रहे मंदिरों की संख्या 140 थी।
We will now be pleased to hear.
अब हम 12 पीड़ितों की परिषद के एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट और क्विंटन एलकु को सुनेंगे। इसके पश्चात गायक मंडली और सभा खड़े होकर के रिजॉइस द लॉर्ड इज किंग गाएगी। स्तुति गीत के पश्चात 70 के एल्डर स्टैनली जी एलियस और जॉन बी डिक्सन हमारा संबोधन करेंगे। उसके पश्चात 12 पीड़ितों की परिषद के एल डेविड के बैनर बोलेंगे।
Many voices from the world in which we live tell us.
जिस विषय में हम रहते हैं वहाँ इसमें बहुत से लोग कहते हैं हमें तेज रफ्तार से जीना चाहिए, हमेशा कुछ अधिक करने की और अधिक पाने की जरूरत होती है। तो भी हम में से प्रत्येक को अपने भीतर गहराई में एक आश्रय स्थल की जरूरत होती है जहाँ शांति और संतुष्टि प्रबल होती है। ऐसा स्थल जहाँ भविष्य की दबावों की तैयारी के लिए हम पुनर्व्यवस्थित होते हैं, संभलते हैं, शक्ति पाते हैं। ऐसी शांति का आदर्श हमारे घरों के चारों दीवारी के भीतर होता है जहाँ हम अपने प्रभु यीशु मसीह को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए सब कुछ किया है। कुछ घरों में पिता होते हैं जो एक योग पौरित्य धारक होते हैं, जिनके साथ विश्वासी निष्ठावान माँ होती है। दोनों एक साथ मिलकर दैनिकता से धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं। बहुत से घरों में यह परिस्थिति भिन्न होती है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने घर में आपके जीवन में यीशु मसीह पर केंद्रित हो सकते हैं क्योंकि इसी जीवन की शांति का स्रोत है। निश्चित करें कि आप निर्णय लेते हैं, चाहे संसारिक हो या आत्मिक, इस पर निर्भर हो कि उधारकर्ता आपसे क्या करवाना चाहता है। जब वह आपके घर का मुख्य केंद्र होता है तो वहां शांति और संतुष्टि होती है। थोड़ा बंद कर। मासूम की जाती है। इस सलाह का पालन करना केवल माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, यद्यपि मार्गदर्शन करना उनकी भूमिका होती है। बच्चे मसीह केंद्रित घर में सुधारों करने के लिए प्यास के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। माता पिता के लिए बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि कैसे उनके काम घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। बच्चे जिन्हें कामों चाहे धार्मिक हों या अध्ययन अन्य प्रकार के प्रति उत्तरदायी बनना चाहिए, वे बड़े होकर राज्य के विश्वसनीय नागरिक बनते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप उन मूलभूत सिद्धांतों को पहचान सकते हैं जो आपके घर को मसीह के पर केंद्रित करते हैं। भविष्यवक्ता की सलाह, प्रतिदिन व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना करना, प्रतिदिन व्यक्तिगत और पारिवारिक धर्मशास्त्र अध्ययन करना, साप्ताहिक पारिवारिक सलूगन संध्या करना एक पति के नित्य के जरूरी है। बिना इन नियमित कामों के किए इस संसार में अति आवश्यक शांति कायम करना अति कठिन है। भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं की प्रति आज्ञाकारी रहें, जिनके पालन करने में मसीह का वापस आप करते हैं, मसीह के सुसमाचार को लाओगे। याद रखें, शॉर्टकट लेने से अपने भविष्य की भविष्य को कम ना करें। याद रखें, छोटी बड़ी बातों की ओर ले जाती हैं। छोटी से दिखने वाली लापरवाहियां या गलतियां बड़ी समस्याओं की ओर ले जा सकती हैं। सरल नियमित अच्छी आदतें जीवन को भरपूर आशीष की ओर ले जाती हैं। आप प्राथमिक के बच्चे हों, युवा कार्यक्रम के युवा और युवतियां, और निर्भीक प्रचारक जो मुझसे अधिक प्रभावी से काम कर रहे हैं जो मैं आपकी आयु में कर पाता था। पृथ्वी से रहने से पहले आप बहादुर, आज्ञाकारी और पवित्र साबित हुए थे। वहां आपने पृथ्वी के जीवन की साहस का सामना करने के लिए गरिमा, सम्मान और सफलता से प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने में कठिन परिश्रम किया था। उन सभी शानदार क्षमताओं के अंतहीन समय के साथ आप पृथ्वी पर आए हो, फिर भी आपके पास वातावरण में असली खतरा है। आपकी महान संभावना और योग्यता सीमित या नष्ट हो सकती है यदि आप झुकाव आप अपने आसपास शैतान प्रेरित भ्रष्ट कामों के प्रति होता है। यद्यपि शैतान का उद्धारकर्ता के साथ कोई मेल नहीं है, शैतान की नियति निश्चित है। वह जानता है वह हार चुका है, लेकिन वह उसके साथ अपने साथ बहुत से लोगों को ले जाना चाहता है। वह आपकी कमजोरी का लाभ उठाकर आपकी सच्चाइयों, अच्छाइयों और योग्यताओं को दूषित करने का प्रयास करेगा। प्रभु की तरफ रहें और हर बार आप विजयी होंगे। आप ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां तकनीकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। मेरी आयु के बहुत से लोगों के लिए इसके साथ काम करना वाला बहुत कठिन है। ये विकास आशीष और साप हो सकते हैं, यह निर्भर करता है कि आप किस कैसे इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। तकनीक जब ठीक से समझी और सही उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है तो इससे कोई खतरा नहीं होता, बल्कि इससे आत्मिक बातचीत में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, हम में से बहुतों के पास एक व्यक्तिगत उपकरण है जो हमारी जेब में आ सकता है। इसके बिना हम शायद ही कहीं जाते हैं। एक दिन हम कई बार इसका उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से ये दो उपकरण गंदगी या समय की बर्बादी का स्रोत भी हो सकते हैं, लेकिन यदि अनुशासन से उपयोग किया जाए तो यह तकनीक समाज की बुराइयों से सुरक्षा का हथियार हो सकती है। कुछ वर्ष पूर्व तक कौन कल्पना कर सकता था कि संपूर्ण धर्मशास्त्र और वर्षों के महासम्मेलन संदेश आपकी जेब में आ सकते हैं। केवल इन्हें जेब में रखने मात्र से आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती, लेकिन शांत पलों में प्रतिदिन इनका अध्ययन, मनन और सुनने से आत्मा से बातचीत करने में वृद्धि होगी। आप तकनीक का उपयोग करने में समझदार बने। अपने उपकरण में महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों को चिन्हित करें और निरंतर इनके संदर्भ करें। यदि आप नौजवान लोग धर्मशास्त्र की एक आयत को और वैसे ही ध्यान दोगे जैसे आप टेक्स्ट संदेश भेजने में देते हैं, तो बहुत जल्दी आप धर्मशास्त्रों के सैकड़ों अध्याय आपको याद हो जाएंगे। ये अध्याय जरूरत के समय पवित्र आत्मा से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाने के शक्तिशाली स्रोत साबित होंगे। अपने जीवन में पवित्र आत्मा का विनम्र मार्गदर्शक प्रभाव पाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसे करने, हमारे घरों को मसीह केंद्रित करने के हमारे प्रयासों को बहुत जरूरी है। उन पुरुणों प्रेरणाओं के प्रति आज्ञाकारी होकर काम करने से हमें अधिक शक्ति मिलती है। आपको अत्यधिक शांति मिलेगी जब आप आज्ञाकारी होने के अपने प्रयासों के साथ अपने आसपास के लोगों की सेवा को भी जोड़ देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत कम प्रतिभा है। विनम्रता और उदारता से उन प्रतिभाओं का उपयोग अपने आसपास के लोगों का जीवन आशीषित करने के लिए करते हैं। स्वार्थीपन अत्यधिक दुष्टता की जड़ है। बुराई का समाधान हमारे उद्धारकर्ता का जीवन में दिखाई देता है। वह हमें दिखाता है कि कैसे दूसरों की निस्वार्थ सेवा में जीवन को केंद्रित करते हैं। मैंने एक सच्चाई को सीखा है जो कि मेरे जीवन में कई बार दोहराई गई है, जिसमें एक परिपूर्ण नियम है जिसे मैं जान गया हूं। यह परमेश्वर की शक्ति के संबंध में आज्ञाकारिता और उसकी सेवा की परिभाषित करती है। जब हम परमेश्वर की प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके बच्चों की निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, इसका प्राकृतिक परिणाम परमेश्वर की शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी क्षमता से अधिक कर सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण, हमारी प्रतिभाएं, हमारी योग्यताएं का विस्तार होती है, क्योंकि हम प्रभु से शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। उसकी शक्ति शांति से भरे घर को स्थापित करने के लिए एक मूलभूत अंग है। जब आपका घर उधारकर्ता पर केंद्रित होता है, यह प्रतीकात्मक रूप से न केवल आपके घर के परिवार के लिए बल्कि आपके मित्रों के लिए भी एक आश्रय बनता है जो कि अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। वे उस शांति के ओर खिंचे आएंगे जिसे वे यहां महसूस करते हैं। ऐसे मित्रों को अपने घर में स्वागत करें। वे उस मसीह केंद्रित वातावरण में फलेंगे फूलेंगे। अपने बच्चों के मित्रों के मित्र बने, उनके लिए एक योग उदाहरण बने। महानतम आशीषों में से एक इस संसार को दे सकते हैं वह मसीह केंद्रित घर की शक्ति, जहां सुसमाचार सिखाया जाता है, अनुबंधों का पालन किया होता है और भरपूर प्रेम मिलता है। वर्षों पहले मिशन भ्रमण के बाद मेरी पत्नी जिनिन ने मुझे एक एल्डर के विषय में बताया जिससे वह मिली थी। जिनिन ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने उसके जवाब से वह आश्चर्यचकित हुई। उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसने आगे बताया उसके जन्म के बाद उसकी माँ ने उसे एक अनाथालय को दे दिया। उसने अपना बचपन एक परिवार से दूसरे परिवार जाने में बिताया। एक किशोर के रूप में सुसमाचार पाकर वह आशीषित हुआ था। एक प्रेमी वार्ड परिवार ने उसे मिशन सेवा का अवसर पाने की मदद की थी। बाद में जिनिन ने मिशन अध्यक्षा की पत्नी से इस अल्डर के विषय में पूछा था। उससे पता चला कि कुछ महीने पहले यह एल्डर तबियत ठीक न होने के कारण मिशन होम में रहा था। इस समय के दौरान उसने उनके परिवार के साथ पारिवारिक घरेलू संध्या में शामिल हुआ। मिशन क्षेत्र में वापस जाने से पहले उसने मिशन परिजन से पूछा, क्या मिशन समाप्त होने से पहले एक या दो दिन में मिशन होम में दोबारा रह सकता हूं? वह जानना चाहता था मसीह केंद्रित परिवार कैसे काम करता है। वह अपने परिवार को उनके परिवार के आदर्श पर स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार का घर पाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं उसे करें। उन तक पहुंचे जो कठिनाई में रहते हैं। एक सच्चे मित्र बने। इस प्रकार की अनंत मित्रता उस रोड़ी के समान होती है जो जीवन के खड्डों को भरती है और हमारे यात्रा को निर्विघ्न और अधिक रोचक बनाती है। इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ पाने के स्रोत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक खजाने की तरह संजो कर रखने और बांटने के लिए होना चाहिए। अपने घरों में एक दूसरों का स्वागत करें जिन्हें ऐसे अनुभव बल से बल बनने की जरूरत है। कुछ अंतिम विचार उनके लिए कहता हूं जो परिवार से उस सदस्य से प्रेम करते हैं जो सही चुनाव नहीं कर रहे हैं। यह हमारे धैर्य और सहनशीलता को चुनौती दे सकता है। हमारे प्रभु में उसके समय में भरोसा करने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थनाओं और बचाने के प्रयासों को सकारात्मक जवाब आएगा। सेवा करने, आशीषित करने और निर्णयता से भविष्य की इच्छा को स्वीकार करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वह हम सब करते रहें। हम विश्वास करते हैं और याद रखते हैं कुछ बातें जिन्हें प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। वह हमें अपने बोझ को अब उसके चरणों में अर्पित करने का निमंत्रण देता है। विश्वास के साथ हम जान सकते हैं हमारा यह भटका हुआ प्रियजन अकेला नहीं है, लेकिन एक प्रेमी उधारकर्ता की देख रेख में है। दूसरों की भलाई को पहचाने, उनकी कमियों को नहीं। कभी कभी इस कमी को दूर करने के लिए उचित ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन हमेशा उसके सद्गुणों को बढ़ावा दें। जब आपको लगता है कि आशा की एक छोटी सी किरण है, यह वास्तव में एक किरण नहीं लेकिन जीवन बचाने की एक शक्तिशाली और दिलासा देने की कड़ी है। वह आपको दिलासा देगी कि आप भयभीत ना हो। योग्यता से जीने का प्रयास करें और प्रभु में अपना भरोसा रखें। हम चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि हम उन सब कामों को एक साथ नहीं कर पाते जो प्रभु हमसे करने के लिए सलाह देता है। उसने सब कामों को उचित समय और मौसम के विषय में भी कहा है। मार्गदर्शक हमारे लिए सच्ची प्रार्थनाओं के जवाब में वह हमें उससे करने का निर्देश देगा जिसे जीवन के प्रत्येक दौर में महत्व दिया जाना चाहिए। एक समय में एक नियमित कदम लेकर हम सीखते हैं, विकसित होते हैं उसके समान और बनते रहते हैं। मैं गवाही देता हूं कि यीशु मसीह का सुसमाचार पर मजबूती से आधारित एक आज्ञाकारी जीवन जीने से हमारे घरों में शांति और आश्रय का महानतम आश्वासन मिलता है। फिर भी बहुत सी चुनौतियां या कष्ट होंगे, लेकिन अशांति के बीच भी हम आंतरिक शांति और गहन सुख का अनुभव कर सकते हैं। मैं गवाही देता हूं यीशु मसीह का प्रायश्चित भरपूर शांति का स्रोत है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Recent experiences have caused me to reflect.
हाल के अनुभव के कारणवश मैंने शांति के सिद्धांत पर प्रकाश डाला, विशेषकर यीशु मसीह की भूमिका पर हम सभी को व्यक्तिगत स्थायी शांति को पाने में मदद करने के लिए। कुछ महीनों की बीती दो घटनाओं ने मेरे गहराई से छू लिया। पहला, एमिली पार्कर की अंत्येष्टि में बोला था एक अमूल्य 6 साल की जिसने अपना जीवन 25 अन्य लोगों के साथ खोया था, 19 छोटे बच्चों के साथ न्यू टाउन केंटकी कट के दुखित गोलीबारी की घटना में। मैं उस परिवार के साथ शोकित था और जाना कि बहुतों से शांति छीन ली गई थी। मैंने उसके अभिभावकों में विश्वास और शांति पाई थी, रॉबर्ट और एलिसा पार्कर। दूसरा, मैं आइवरी कोस्ट एविजन के शहर के हजारों विश्वासी गिरजे के सदस्यों से मिला था। यह फ्रेंच बोलने वाली वेस्ट अफ्रीकन देश की वित्तीय का निरंतर दुर्भाग्य, आघात, सेना और हाल ही की दो जंग 2011 की अंतिम थी। फिर भी उनकी उपस्थिति में मुझे विशेष शांति का एहसास हुआ था। घटनाएं अक्सर हमारी शांति को लूटती हैं और हमारे मन को क्षति पहुंचाती हैं। कौन 11 सितंबर 2001 के आक्रमण संयुक्त राष्ट्र पर कई जगह पर हुए थे कौन भूल सकता है। ऐसी ही घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कैसे तीव्रता से हमारी शांति और सुरक्षा को नष्ट किया जा सकता है। वे अपने मकान की छत पर से उसे भयभीत करने वाले दृश्य को देखकर डर गए और उन्होंने सोचा कि यह किस तरह की दुर्घटना है। अचानक से वे दूसरे हवाई जहाज साउथ टावर से जा टकराए का गवाह बने। उन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी और निचले मैनहट्टन पर आक्रमण हुआ था। जब साउथ टावर गिरा, उनके मकान की इमारत धूल को आंधी से निगल लिया था जो निचले मैनहट्टन में आ रहा था। परेशान थे कि वे किस बात के गवाह बने थे और आगे के लिए चिंतित, उन्होंने अपना रास्ता सुरक्षित जगह की ओर लिया था। तब वे मैनहट्टन स्टेक गिरजे की इमारत जो लिंकन सेंटर में थी की ओर गए थे। जब वे पहुंचे, उन्होंने पाया कि अन्य कई और सदस्यों ने निचले मैनहट्टन के स्टेक सेंटर में एकत्रित होने का निर्णय लिया था। उन्होंने हमें बताने को फोन किया कि वे कहाँ हैं। मुझे शांति मिली कि वे सुरक्षित थे, परंतु उनके स्थान से आश्चर्यचकित नहीं था। आधुनिक प्रकटीकरण सिखाता है कि जायन का स्टेक बचाव के लिए और तूफान से बचाने का शरण स्थान और रोज से पूरे संसार के ऊपर जब इसे बिना मिलाए डाला जाता है। वे हफ्ते से पहले अपने घर नहीं लौट सकते थे और मासूम लोगों की मौत से बिखर गए थे, परंतु उनका कोई पक्का नुकसान नहीं हुआ था। इन घटनाओं पर मनन करता हूँ, मैं बहुत प्रभावित हुआ था संसार या विश्व की शांति और व्यक्तिगत शांति के बीच के भिन्न सिद्धांतों से। उद्धारकर्ता के जन्म के समय परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों ने प्रशंसा और घोषणा की थी, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। तथापि यह मर्मस्पर्शी विवेक था जो इस अनंत विशेष युग में परमेश्वर के पुत्र के जन्म का अनुसरण करता है। राजा हेरोदस ने बेतलहम में मासूम छोटे बच्चों की हत्या करवाई थी। आनंद की योजना के लिए चुनना जरूरी है। हमारी आनंद की प्रगति के लिए प्रेम, बलिदान, व्यक्तिगत विकास और जरूरी अनुभव इसके लिए अनुपति है। चुनना सभी दर्द और पीड़ा जिसे हम नश्वरता में अनुभव करते हैं की भी अनुमति देता है, जहाँ जब कुछ बातों के कारण से जिसे हम समझते नहीं और दूसरे के सर्वनाश का बुरे चुनाव भी होता है। स्वर्ग में जंग हमारे नैतिक चुनाव करने की मजदूरी और उद्धारकर्ता के धरती पर की सेविकाई को समझने के लिए जरूरी थी। जैसे मत्ती का 10वां अध्याय याद करें, उद्धारकर्ता ने 12 को निर्देश दिए और पहचाना कि उसकी सेविकाई इस नश्वर जीवन में विश्व के लिए शांति नहीं ला सकेगी। प्रेरितों को बताया गया कि योग्य घरों के ऊपर जैसे वे भेंट करते हैं शांति को छोड़े और चेतावनी दें कि तुम भेड़ियों के बीच हो और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। एक विशेष घोषणा करती है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। यह साफ हो गया है कि सांसारिक शांति का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था। मसीह की नश्वर सेविकाई के दौरान यह अब भी नहीं है। सिद्धांत और अनुबंध में प्रभु भूमिका में कई महत्वपूर्ण नियमों को सिखाया गया है। आदर के साथ उनके लिए जो पश्चाताप नहीं करते, उनकी आत्मा मसीह की आत्मा जो इस संसार में आए हैं उन सभी को दी गई है। मनुष्य के साथ हमेशा नहीं रहेगी और भी पृथ्वी से शांति ले जाएगी। भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की कि शांति पृथ्वी से उठा ली गई। लूसीफर को अभी बांधा नहीं गया और वो प्रजाति पर शक्ति का अभ्यास करता है। अच्छे लोगों के लिए हर जगह और हमेशा के लिए स्वर्गीय आकांक्षा संसार में शांति होगी। इस उद्देश्य को पाने की उम्मीद हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। परंतु अध्यक्ष जोसेफ एफ स्मिथ ने सिखाया था, वह शांति और प्यार की आत्मा वह कभी भी संसार में नहीं आ सकती जब तक मानव जाति परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर का संदेश प्राप्त न कर लें और उसकी शक्ति और अधिकार को ज्ञात करें जो पवित्र है। हम विश्व भर की शांति के लिए गंभीरता से आशा और प्रार्थना करते हैं, परंतु इसे व्यक्तिगत और पारिवारिक तौर पर हम इस तरह की शांति को पाते हैं जो कि नेकता के उपहार का वादा है। यह शांति उद्धारकर्ता की सेवकाई और प्रायश्चित बलिदान का वादा किया उपहार है। इस नियम को सिद्धांत और अनुबंध में संक्षिप्त से लिया गया है, लेकिन सीखो कि जो भी नेकता का काम करता है उसे उसका उपहार प्राप्त होगा, यहाँ तक कि संसार में शांति और आने वाले संसार में अनंत जीवन। अध्यक्ष जॉन टेलर ने सिखाया था कि शांति ही सिर्फ इच्छा अनुसार नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का उपहार है। शांति जिसका मैं संदर्भ करता हूँ ना ही केवल स्थायी प्रतिलेखन है, यह गहराई गंभीरता से आनंद और आत्मिक संतोष है। अध्यक्ष हिबर जे ग्रांट ने उद्धारकर्ता की शांति का वर्णन इस तरह से किया, उसकी शांति हमारी पीड़ा को आसान कर देती है, हमारे टूटे हृदय को जोड़ती है, हमारी नफरत के दाग को खत्म कर देती है, हमारी छाती में अपनी संगी साथियों से प्रेम उत्पन्न करती है और हमारी आत्मा में रंग भरकर शांत करती है और आनंदित करती है। एमिली पार्कर के अभिभावकों के साथ मेरी मुलाकात के दौरान उद्धारकर्ता की शांति ने उस दर्द का अनुभव कम कर दिया और उसके टूटे हुए हृदय को बांधा था। यह ध्यान देने वाली बात है कि गोलीबारी के तुरंत बाद भाई पार्कर ने ऐसा करके अपराधी को क्षमा कर दिया था। जैसे अध्यक्ष ग्रांट ने कहा, उद्धारकर्ता की शांति हमारी नफरत पर धब्बा है। आइवरी कोस्ट के संत उस समय उसके देश में नागरिकों के जंग के दौरान यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकृंदित होने और जीने के द्वारा विशेषकर परिवार का इतिहास और उसके पूर्वजों के लिए मंदिर कार्य करने पर जोर देकर शांति को पाया था। हम सभी के लिए शांति है। शांति न सिर्फ सुरक्षा या जंग के अभाव, हिंसा, विरोध और विवाद के लिए होती है। शांति यह जानते हुए आती है कि उद्धारकर्ता जानते हैं कि हम कौन हैं, जानते हुए कि हमें उन पर विश्वास है, उनसे प्रेम है, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, यहाँ तक कि जीवन को तोड़ने वाली परीक्षा और दुखित घटनाएं भी। प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को लिबर्टी जेल में हृदय को राहत पहुंचाने का जवाब दिया, मेरे पुत्र तुम्हारी आत्मा शांति पाए, तुम्हारी विपत्ति और तुम्हारी पीड़ा सिर्फ कुछ क्षणों की है, और तब यदि तुम अंत तक जीवित धरते हो परमेश्वर तुम्हें उत्कर्ष करेगा। स्मरण रखो क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वे जो परमेश्वर को नकारते हैं वहां पर शांति नहीं है। हम सबों ने स्वर्ग के परिषद में भाग लिया था जिसमें आचरण की विधि दी गई थी, जानते हुए कि वहां पर घातक पीड़ा और यहां तक विधि के उल्लंघन के कारण अकथनीय दुखित घटनाएं होंगी। हम समझते हैं कि हमें ये क्रोधित गड़बड़ाए हुए असुरक्षित और आलोचनीय कर सकता है, परंतु हम जानते हैं कि उद्धारकर्ता का बलिदान बाहर निकलेगा और सभी नश्वर जीवन के अनुचित कामों के लिए हमारे लिए शांति लाएगा। एल्डर मैरियन जी होंकस द्वारा लिखित कहावत को अपनी दीवार में लगाया, परमेश्वर में विश्वास करने से जानना है कि सभी नियम अच्छे होंगे और यहाँ तक कि यहाँ की अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला होगा। शांति का आधार क्या है? बहुत से सांसारिक तरह से शांति को खोजते हैं जिन्होंने कभी नहीं पाया और कभी नहीं सफल होंगे। शांति बहुत से संपत्ति में, शक्ति या श्रेष्ठता में नहीं पाई जाती है। शांति आनंद की खोजने में, मनोरंजन या फुर्सत में नहीं पाई जाती। इसमें कोई भी नहीं, यहाँ तक कि बहुतायात में पहुँचने, आनंद या शांति को स्थायी बनने से नहीं हो सकती। हम कब कहाँ शांति पाएंगे? मैं कहाँ शांति के लिए कहाँ जाऊँ, अपनी राहत के लिए कहाँ जाऊँ जब दूसरे रास्ते मेरे लिए बंद हों? जवाब है उद्धारकर्ता जो शांति और आधार का लेखक है, वह शांति का राजकुमार है। उद्धारकर्ता के निकट हम कैसे रहते हैं? परमेश्वर के सामने खुद को दीन बनकर, हमेशा प्रार्थना करके, पापों से पश्चाताप करके, टूटे हृदय और शोकित आत्मा के साथ बपतिस्मे के पानी में जाकर, यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनकर, नेकता का ग्रहण उदाहरण बनकर, यही स्थिरता द्वारा शांति का उपहार होता है। राजा बेंजामिन का मसीह के प्राश्चित के विषय के उत्तेजक संदेश के लिए भीड़ जमीन पर गिर रही थी, तब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आई। भविष्य में आने वाले यीशु मसीह पर अपने भरी विश्वास के कारण वे अपने पापों से मुक्त और आत्मसंतोष पाकर वे महान आनंद से भर उठे। पश्चाताप और नेकता से जीना विवेक को शांति के लिए अनुमति देता है जो तृप्ति के लिए आवश्यक है। जब कहीं भी बड़ा उल्लंघन होता है, शांति को लाने के लिए कबूलना आवश्यक होता है। शायद शांति की तुलना किसी के साथ नहीं होती जो पछतावे की आत्मा से आती है। प्रभु को अपना बोझ देकर और प्रायश्चित की आशीषों को मांगकर, जैसे अन्य गिरजे का स्तुति गीत इस तरह से कहता है, I'll drop my burden at his feet and bear a song away. मेरा आहार हृदय आनंदित है जब मैंने जाना कि हमारे दिनों में हजारों में युवक युवतियां और वृद्ध प्रचारकों ने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के दूत होने के बुलावे को स्वीकार किया है। ऐसा करते हुए वे पुनर्थानित शांति को सुसमाचार संसार में ले जाकर, एक वक्ति और एक समय में एक परिवार के पास जाकर, नेकता का काम जो स्वर्गीय पिता के बच्चों के पास शांति लाता है। गिरजाघर शरण स्थान है जहां मसीह के अनुयायियों को शांति मिलती है। कुछ युवा लोगों ने संसार से कहा है कि वे आत्मिक हैं परंतु धार्मिक नहीं। आत्मिकता के एहसान का होना एक अच्छा कदम है, इसलिए इस गिरजे में जहां हम आराधना करते, सिखाते और परमेश्वर के अच्छे शब्दों का पोषण पाते हैं, अधिक जरूरी है गिरजे में पौरोहित्य अधिकार का होना जो पवित्र धर्माविधियों और अनुबंध देते हैं जिससे परिवार एक साथ बनता है और हम में से हर एक परमेश्वर पिता यीशु मसीह के साथ सेलेस्टियल राज में वापस जाने के लिए योग्य होते हैं। यह धर्म विधियां शांति लाती हैं क्योंकि यह प्रभु के साथ अनुबंध है। मंदिर जहां बहुत सी पवित्र धर्माविधियां होती हैं और लगातार भी होती हैं। मेरे दिमाग में एक श्रेष्ठ अनुभव आया
One experience preeminent in my mind is the Fiji Temple open house and dedication. There had been political
वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल थी, परिणाम स्वरूप जलाने का विरोध और सोवा में लूटपाट था, संसद पर कब्जा और सांसदों को बंदी बनाया गया था। फिजी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत था। सेना के ओपन हाउस के कुछ बड़े सदस्यों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई थी और छोटे समूह को समर्पण के लिए। सुरक्षा की वजह से उन सदस्यों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। यही सिर्फ मंदिर का समर्पण था। तब से नाबू मंदिर का समर्पण कठिन परिस्थितियों में हुआ था। एक व्यक्ति ने खोली वार्ता के लिए एक हिंदुस्तान की प्रिय हिंदू महिला को आमंत्रित किया। संसद की सदस्य थी, जिसे बंदी बना लिया गया था, परंतु औरत होने के नाते छोड़ दिया गया था। सेलेस्टियल कमरे में दुनिया के शोरगुल से मुक्त वह सचमुच में आंसू में विलीन, जैसे वह शांति के एहसासों का भावुक होकर वर्णन कर रही थी। उसने पवित्र आत्मा के आराम और मंदिर की पवित्र प्रकृति को महसूस कर साक्षी दी थी। उद्धारकर्ता सच्ची शांति का साधन है, यहाँ तक जीवन की परीक्षा के साथ, क्योंकि उद्धारकर्ता का प्रायश्चित और उसका अनुग्रह योग्य जीवन व्यक्तिगत शांति के साथ पुरस्कारित होंगे। घनिष्ठता से बना फसक पर्व के कमरे में उद्धारकर्ता ने अपने प्रेतों से वादा किया कि वे सहायक के साथ, जो कि पवित्र आत्मा है, से आशीषित होंगे। और तब ये अनंत महत्वपूर्ण शब्द थे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। उसकी मध्य प्रार्थना से पहले मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एलिजा स्नो ने इस धारणा को खूबसूरती से लिखा, लिफ्ट अप योर हार्ट्स इन प्रेज टू गॉड, लेट योर रिजॉइसिंग नेवर सीज, दो ट्रिबुलेशंस रेज अब्रॉड, क्राइस्ट सेज इन मी यू शैल हैव पीस। आई सो टेस्टिफाई, के नाम में गवाही देता हूँ, आमीन।
This is the 183rd annual General Conference.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 183rd वार्षिक जनरल सम्मेलन है।
brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a 70. The 70 are called to be messengers.
मैं 70 के रूप में सेवा करता हूँ. 70 को प्रभु के शब्दों को बांटने के लिए, जिन्हें हम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और आत्मा से प्राप्त करते हैं, और संसार में सुसमाचार का प्रचार करने, गिरजे का निर्माण करने और इसके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए सर्वाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. मैं बर्ले आइडहो के निकट एक फार्म में बड़ा हुआ, एक सच्चा आइडहो फार्म लड़का, जैसा कि मैं सीखा काम करने के लिए. यदि आप बोते नहीं तो आपको फसल नहीं मिलेगी. अच्छा काम करने के लिए यदि आप पानी और खाद डालते हैं तो आपको अधिक फसल मिलती है. समय का महत्व, यदि आप सही समय में नहीं बोते तो समय से पहले पाला फसल को नष्ट कर सकता है. जो किया जाना है यह करना चाहिए, उसके करना बेशक या
In this respect, as I have served throughout the church, I have often asked, do you want me to speak directly or with sugar? As a rule, the saints have chosen direct. I will be direct today. Finally, as an Idaho farm boy, I learned to stick to the basics.
अंततः आइडहो के फार्म लड़के के रूप में मैंने सीखा है, बुनियादी बातों से जुड़े रहो. हमारा सिद्धांत और हम सभी के लिए प्रथम विश्वास के अनुच्छेद की सच्चाइयों से अधिक बुनियादी कुछ नहीं है. हम जानते हैं पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं. इसके आगे वह हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें जानता है, हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसके वापस आएं. यीशु हमारा उद्धारकर्ता और मुक्त आता है, जो प्रायश्चित से हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी और फिर से जीवित होंगे और हमें हमारे लिए उत्कर्ष और अनंत जीवन संभव होगा. पवित्र आत्मा हमारा सहायक, प्रकर्ता, शिक्षक, गवाह और मार्गदर्शक है. भाइयों और बहनों, इस पर विचार करें, हम आत्मिक रूप से अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं. अनाथ ना होकर माता पिता के होने के क्या फायदे हैं? हम उनसे सीखते हैं, उनके अनुभव से लाभ ले सकते हैं, उनकी गलतियों से बच सकते हैं जिनसे वे सतर्क करते हैं और उनके दृष्टिकोण के कारण अच्छी तरह समझ सकते हैं. हमें भटकने, उलझन में पड़ने, धोखा खाने या कम प्रभावी होने की जरूरत नहीं है. विशेषकर हमें स्वर्गीय पिता के मामले में यह सच है, जिसने हमें न केवल मार्ग दिखाया और बल्कि सही मार्ग दिखाया है. परमेश्वर ने के पास सही मार्ग है. असल में परमेश्वर के पास जीने का, प्रेम करने का, मदद करने का, प्रार्थना करने का, एक दूसरे के बातचीत करने का, मार्गदर्शन करने का, विश्वास विवाह करने का, बच्चों को बड़ा करने का, सिखाने का, सच्चाई जानने का, सुसमाचार बांटने का इत्यादि मार्ग है. धर्मशास्त्रों के साथ साथ थ्रू टू द फेथ फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ और जीवित प्रेरिताओं और भविष्यताओं के रिक्शे प्रभु के मार्ग सिखाने के अन्य महान स्रोत हैं. इन अंतिम दिनों की बुराइयों में से एक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वर के मार्ग पर चलता है. नीति वचन में हमने चेतावनी दी जाती है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो और तू अपनी समझ का सहारा ना लेना. हमें सिखाया जाता है कि यदि हम प्रभु के मार्ग के अनुरूप काम करते हैं और वह अपने आशीष देने के लिए बाध्य है और हमारा उसकी प्रतिज्ञा अधिकार है, और यदि उसके मार्ग के अनुरूप नहीं करते तो हमारे लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है. प्रभु ने भविष्यवक्ता सैमुएल को अपने प्रतिष्ठण के हमारे मार्ग के विपरीत किया था, जिसे नया राजा पाने के लिए भेजा गया था. परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा कि ना तू अपने रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने जो अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का नहीं है. मनुष्य तो बहुत
बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा दृष्टि मन पर रहती है। बेशक हम मदद करने के सक्षम हैं, हमें वह सब नहीं देखना या उपलब्ध करना चाहिए जिससे वे स्वयं कर सकते हैं, और उन्हें करना चाहिए। हम हर जगह इसको परखा गया है, संसार दीन और की बुराई जानता है। आओ हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार कर दें। प्रचारक कार्य करने के लिए प्रभु का मार्गदर्शन, प्रेम करने के प्रभु का अपना संयम मार्ग सही है। संसार के लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण या यह है कि दो व्यक्ति आपस में प्रेम करें। स्वर्ग में हमारा पिता सिखाता है कि यह महत्वपूर्ण है कि, लेकिन वह इससे अधिक सिखाता है कि उस प्रेम को व्यक्ति करने का अधिक मार्ग और समय से समय होता है। एक बात हमें अक्सर सिखाई जाती है कि जब हम हैं वहीं पर प्रगति है, फिर भी कभी कभी हम किसी नए स्थान पर बसने का लालच करते हैं, सोचते हैं कि वहां हमारे बच्चों के पास अधिक मित्र होंगे, इसलिए हमें युवा कार्यक्रम होंगे। भाइयों और बहनों, क्या हम सचमुच सोचते हैं कि हमारे बच्चों के उद्धार के लिए हमारा आस पड़ोस अति महत्वपूर्ण है? प्रेरित और भविष्यवक्ता अक्सर सिखाते हैं कि बाहर विकास किसका सामना करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण है कि घर के भीतर क्या होता है। रहने के साथ स्थान को निर्धारित करने के निश्चित से अंतिम तत्व शामिल होते हैं। अन्य प्रश्न उठता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। 16 वर्षों तक मैंने ह्यूटन टेक्सास नॉर्थ स्टेक की अध्यक्षता की सेवा की थी।
Only once in 16 years did I receive a call.
16 वर्षों में केवल बार एक फोन करने पूछा गया था, किस वार्ड को अच्छे परिवार की जरूरत है, हम कहां सहायता कर सकते हैं। गिरजे के अधिक आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष ब्रिगम यांग और अन्य किसी निश्चित स्थान पर गिरजे के प्रगति के लिए सदस्यों को वह नियुक्त करते हैं। क्या हम वास्तव में आशा करते हैं कि अध्यक्ष मानसन हम 1,40,00,000 से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से बताए कि हमारे परिवार की कहां सफलता, कहां जरूरत है? प्रभु का मार्ग है कि हमें अपने मार्गदर्शनों की शिक्षाओं पर ध्यान दें। वह सब जो गिरजे में हो रहा है, और प्रभु अपने कार्य को हर तरह उससे शीघ्रता से करता है। इससे चलते हैं, और अधिक महत्वपूर्ण है कि जो कुछ करते हैं उसे उसके मार्ग से अनुरूप करें।
As we see so many in the world today living in confusion,
जैसा कि हम देखते हैं बहुत से हैं जो वर्जित मार्गों पर भटकते हुए आज संसार में उलझन भरा या इससे भी बदतर जीवन जीते हैं, और गलतियां करने के कारण अनावश्यक दुख सहते हैं, और देखकर चाहते हैं कि आत्मा की क्या की तरह जोर से पकारूं। हाँ, मुक्ति की योजना के प्रति मैं हर आत्मा के लिए घोषणा करता हूँ कि उन्हें पश्चाताप कर अपने परमेश्वर के पास आना चाहिए कि पृथ्वी और उनके अधिक न दुखे हों। फिर से मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु की का सही मार्ग है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें जानता है, हमें प्रेम करता है, मदद करता है। वह अच्छी तरह जानता है कैसे मदद करनी चाहिए। आत्मिक से आनंद अनाथ नहीं है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। उसका मार्ग अनंत सच्चाई पर आधारित है, और इस संसार में और आने वाले संसार में अंत्य जीवन में शांति के लिए प्रवर्त करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
The Savior's mortal ministry was complete. उत्कर्ष की नश्वर सेवकाई पूरी चुकी थी, गतसमनी में और सलीब पर उसके कष्ट समाप्त हो गए थे। प्रेरितों के काम के अध्याय एक से हम जानते हैं कि अपने पुनरुत्थान के पश्चात उसने 40 दिनों तक सेवकाओं की प्रेरितों को दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य के संबंध में बातें करता रहा। उसने उनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसके तुरंत बाद वे ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए और कहने लगे, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर आएगा। सचमुच उद्धारक दोबारा आएगा, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह के सुसमाचार को पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुँचाना है। मत्ती से हम प्रेरितों के लिए संपूर्ण राष्ट्रों में सुसमाचार को ले जाने के विशेष आदेश के विषय में जानते हैं। और यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब राष्ट्रों के लोगों को शिक्षा दो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। गिरजे के शुरुआती दिनों मध्यकालीन युग में सुसमाचार केवल इज़राइल के घराने को दिया गया था। फिर पत्रस वरिष्ठ प्रेरित को प्रकटीकरण मिला कि सुसमाचार को इज़राइल के बाहर और अन्य जातियों को सिखाने का समय आएगा। प्रेरितों के काम के 10वें और 11वें अध्याय हमें उस प्रक्रिया और तरीके को समझाने में मदद करते हैं जिसके द्वारा गिरजे के पीठासीन अधिकारियों और सामान्य सदस्य को ज्ञात कराया गया कि परमेश्वर की अन्य संतानों के लिए गिरजे के विस्तार की आवश्यकता थी। कुर्नेलियस का इस्तेमाल करते हुए जो कि अन्य जाति से एक सुबेदार और भला पुरुष था, प्रभु ने पत्रस पर प्रभाव डाला कि सुसमाचार को अन्य जातियों को ले जाना चाहिए। उस समय के संतों के लिए ये विचार नया और भिन्न था। गिरजे के कामकाज में इस परिवर्तन को करने का प्रकटीकरण पत्रस वरिष्ठ प्रेरित को मिला था। हम जानते हैं कि सुसमाचार तब तेजी से अन्य जातियों के राष्ट्र में पहुंचा। उस समय गिरजे के विस्तार का एक उदाहरण पौलुस का परिवर्तन था, जो कि उन अन्य जातियों के लिए महान प्रेरित बना। उसे दमिश्क के मार्ग में दिव्य दर्शन हुआ था, जिसमें उसने प्रकाश देखा और आवाज सुनी, अपने पापों का पश्चाताप किया और परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया और फिर यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने में जबरदस्त ताकत बना था। आओ अब हम इसके 1800 वर्ष आगे सुसमाचार की पुनर्स्थापना के समय या द्वितीय आगमन से पूर्व सब बातों के पूरा होने में जाते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा गिरजे को पुनर्स्थापित किया गया है और प्रथम अध्यक्षता और 12 प्रेरितों की परिषद के निर्देशन में निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सुसमाचार को विश्व में पहुंचाने का उनका आदेश वैसा ही है जैसा प्राचीन प्रेरितों का था। 1830 में अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के संगठन के समय से गिरजा एक राष्ट्र से अन्य राष्ट्र, एक संस्कृति से अन्य संस्कृति से संपूर्ण विश्व के लोगों तक निरंतर प्रभु के कैलेंडर और उसके समय में आगे बढ़ा है। फिर 1968 प्रकटीकरण के स्थापित नमूने का पालन करते हुए वरिष्ठ प्रेरित इस समय अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल द्वारा पुरोहितों पर प्रकटीकरण मिला कि संसार के सभी योग्य पुरुषों को पुरोहित्य और पुनर्स्थापित सुसमाचार की प्रत्येक आशीष पाने की अनुमति मिली। इस समय न केवल अधिक बल्कि विश्व भर में स्वर्गीय पिता के सभी बच्चे सुसमाचार कि सभी आशीषों के भागीदार हो सकते थे। मसीह के द्वितीय आगमन के निकट पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है। एक व्यक्तिगत विवरण, मुझे उन्हीं दिनों मिशन अध्यक्ष नियुक्त किया था और बहन डिक्सन और मैं अपने परिवार को मेक्सिको ले जाने ही वाले थे जब एल्डो रिचर्ड जी स्कॉट उस समय स्तर के सदस्य ने मुझे इस विशेष प्रकटीकरण के विषय में बताया। मुझे याद है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने मुझे जो कुछ हुआ था उसके विषय में बताया था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि मैं जानता था वह उचित था और कि संपूर्ण मानव जाति के लिए सुसमाचार की सभी धर्म विद्या अनुभव और आशीषें पाने का समय आ चुका था। ये 34 वर्ष पहले हुआ था और उस समय मैं बहुत कम जानता था कि स्तर में अपनी सेवकाई के कई वर्ष मुझे अफ्रीकी पश्चिम क्षेत्र में विश्वसी लोग के बीच बिताने जिनके जीवन 1978 के पुरोहितों पर प्रकटीकरण से बहुत प्रभावित होंगे। बहन डिक्सन और मैं वहां 4 साल रहे और ये समय हमारे लिए शानदार और जीवन बदलने वाले रहे। लोगों के रूप में पश्चिमी अफ्रीकी लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं और अपने विश्वास की घोषणा करने और अन्य को साथ बांटने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और इनके पास अत्यधिक नेतृत्व क्षमता है। वे गिरजे में सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं और लगभग हर सप्ताह 1 या 2 वार्ड या शाखाएं पश्चिम अफ्रीका में कहीं न कहीं बनती हैं और लगभग हर प्रकरण में पुरोहित्य और सहायक मार्गदर्शक सभी अफ्रीकी लोग ही होते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि आप नाइजीरिया आबा या घाना अकारा मंदिरों में संतों के साथ मिले जहां आप संतों के दृढ़ निश्चय को भाप सकते हैं और सभी अफ्रीकी मंदिर अध्यक्षताओं को जाने या आपका परिचय अफ्रीकी क्षेत्र स्तर से करवाएं जो हमारे साथ आज यहां सम्मेलन केंद्र में एकत्रित हुए हैं और वे वकील प्रोफेसर और व्यवसाय मैनेजर हैं या अफ्रीकी स्टेक और वार्ड मार्गदर्शक और उनके परिवारों से जान पहचान कराएं। अफ्रीका में युवकों को सफेद कमीज और टाई में गिरजे में जल्दी आकर प्रभु भोज तैयारी करते और युवतियों को कक्षा की तैयारी करते और सभी को धर्मशास्त्र लाते और मिशन की तैयारी करते देखना बहुत आम बात है। रविवार विद्यालय सहायक या पुरोहित कक्षा में शामिल होना एक पवित्र अनुभव है जहां गिरजे के पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है और वहां महान सुसमाचार समझ शिक्षा और सीखना पवित्र आत्मा द्वारा होता है। अफ्रीका में सुसमाचार संतुष्ट लोगों में जा रहा है जो उन कई बातों से मुक्त हैं जिन्हें पश्चिम के लोगों को प्रभावित किया है। वे बेइंतहा धन दौलत के लिए चिंतित नहीं है। अफ्रीकी लोगों में यहाँ कहा जाता है उनके पास वे बहुत है जिसका महत्व न्यूनतम है। उन्हें बहुत बड़े घर और बहुत सुंदर कार में बहुत कम रुचि है लेकिन अपने स्वर्ग पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह और अनंत परिवार पाने में बहुत अधिक रुचि है। जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं ये कोई आश्चर्य नहीं कि वे अंतिम दिनों में यीशु मसीह के गिरजे के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने अंतिम दिनों में परमेश्वर के राज्य का दिव्यदर्शन देखा, एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखाड़ते और पृथ्वी के अंतिम छोर तक लुढ़कते और सारी पृथ्वी को ढकते हुए, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि हमारे शानदार अफ्रीकी भाई और बहनें उस भविष्यवाणी के पूरा होने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे कि ऐसे प्रकटीकरण से प्रभु के नमूनों की स्थापना का पालन होता है। मैं गवाही देता हूँ कि हमारी स्वर्गीय पिता अपने सभी बच्चों से प्रेम करता है कि यीशु ही मसीह है और ये सुसमाचार सभी जीवित और मृत दोनों के लिए उपलब्ध है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।
मेरा संदेश एक बड़ा सामूल प्रश्न आत्मिक परिणामों को संबोधित करता है। शुद्धता का नियम इतना आवश्यक क्यों है? मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा से सच्चाई के नियमों जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है उनका पुष्टि करेगा। शुद्धता का आनंद महत्व को सिर्फ हमारे स्वर्ग के पिता को उसके बच्चों के लिए आनंदित होने की योजना को समझना है। सारी मानव जाति, पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर ने अपनी आकृति में बनाया। प्रत्येक स्वर्गीय माता पिता की प्रिय आत्मा पुत्र या पुत्रियां हैं, उनका पवित्र प्रकृति और भाग्य है। नश्वरता में आने से पहले सारे पुरुष और स्त्रियां परमेश्वर के साथ आत्मिक दुनिया में रहते थे। पिता की योजना थी कि उसके आत्मिक पुत्र और पुत्रियां भौतिक शरीर पाएं और नश्वरता का अनुभव लें और उत्कृष्टता की ओर प्रगति करें। हमारा भौतिक शरीर सांस लेना संभव करता है गहराई से, और अनुभव जो कि हमारे पहले के जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकता था। तथापि हमारे रिश्ते दूसरे लोगों के साथ हमारी पहचाने और सच्चाई के साथ करने की क्षमता और हमारे नियमों और यीशु मसीह के सुसमाचार के धर्म विधियों का पालन करने की योग्यता हमारे भौतिक शरीर के द्वारा होती है। नश्वरता के विद्यालय में हम कोमलता, प्रेम, कृपा, आनंद, दुख, निराशा, दर्द और यहाँ तक शरीर की सीमाओं का मतलब भी, जो हमें अनंतता की तैयारी की ओर ले जाने का एहसास कराता है। साधारणता कहा गया, यहाँ पर सबक हैं जो हमें सीखने हैं और अनुभव करने हैं। हमारे साथ जो होते हैं, जैसे धर्मशास्त्र वर्णन करता है, शरीर के अनुसार। धरती की रचना के बाद आदम को अदन की बाड़ी में रखा गया था महत्वता से, तथापि परमेश्वर ने कहा ये अच्छा नहीं कि आदमी अकेला रहे। हवा आदम की पत्नी और सहायक बनी थी। आदमी और औरत दोनों के अद्भुत संयोग से आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनाओं की योग्यता को, आनंद की योजना को विधि विधा करने की जरूरत है। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। आदमी और औरत को इरादतन बल, आशीष, पूर्णता और एक दूसरे की पूर्णता से सीखना है। जिस मतलब से नश्वर जीवन की रचना की गई है, उसे पवित्रता से नियुक्त किया गया। पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को पति और पत्नी होने के नाते अपने अभिभावक के होने के भाग्य को रखना था। पृथ्वी पर फलों और फूलों को की आज्ञा आज भी कायम है, तथापि आदमी और एक औरत के बीच शादी सही आधिकारिक तरीके से हो, जिसके द्वारा पहले के जीवन की आत्मा नश्वरत में प्रवेश करे। शादी से पहले और पूरे तौर से शादी की सच्चाई की इस पाक पवित्रता को पूरी तरह से भावनाओं पर संयम रखकर बचाएं। प्रजनन की शक्ति का आत्मिक महत्व है। इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना पिता की योजना के उद्देश्य और हमारे नश्वर अस्तित्व को उलट देता है। हमारे स्वर्गीय पिता और उसका पुत्र सृष्टि करता है और हम में से प्रत्येक को उनकी रचना की शक्ति का भाग सौंपा गया है। स्वर्गीय पिता की योजना के उद्देश्य का इस्तेमाल सही तरीके से करके के मूल तत्व को सक्रिय करने के लिए विशिष्ट रेखांकित की गई है। हम इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं और महाशक्ति हमारी खुशी को नश्वरता में और हमारे अनंतता की मंजिल को पाने की महान लगन को और बढ़ा देती है। नश्वर जीवन की रचना की शक्ति महान उत्कृष्टता शक्ति है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी है। ये पहली आज्ञा में आदेश था, परंतु दूसरी महत्वपूर्ण आज्ञा इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दी गई थी। शुद्धता के नियम पर हमने जोर देकर अपनी प्रजनन की शक्ति में परमेश्वर की योजना को पूरे करने के समझदारी के उद्देश्य द्वारा बताया है। शादी से बाहर आदमी और औरत के महापवित्र गुण का एक या दूसरी तरह से प्रयोग करना एक नीचा और काम विकृति का पाप है। अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर ही एक अकेला है जो भावनाओं के आचरण का दृढ़ स्तर है। परमेश्वर की योजना का आदेश विवाहित संबंध सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में ही होना चाहिए। ऐसे रिश्ते सिर्फ जिज्ञासा में नहीं जांचे जाते, ना ही भूख की तृप्ति को या मन बहलाने की तरह या स्वार्थी बन पीछा कर मनोरंजन करके। यह ना ही विजय प्राप्त करने के लिए या साधारणता सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते हैं, ना ही यह नैतिकता का हमारी पवित्र प्रकृति का एकमात्र एहसास है और भाग्य और भावनाओं की ओर शक्ति का और पति और पत्नी के बीच का आत्मिक बंधन है। हम नैतिक रीति के साथ आशीषित हैं और अपने परमेश्वर के बच्चे होने पर पवित्र परंपरा की परिभाषा के द्वारा करते हैं और वासना के भाव द्वारा या समकालीन आदत और न्याय से नहीं करते हैं। कुछ दशा तक राजा बिन्याबिन द्वारा स्वाभाविक प्रकृति का मनुष्य का वर्णन हम सबों में अच्छे से जीवित है। पुरुष और स्त्री की स्वाभाविक प्रकृति बिना पश्चाताप वासना और कामुक है। यह अनुकूल और अधिकतम है। यह गौरव और स्वार्थी है। जैसे स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने सिखाया, स्वाभाविक प्रकृति का मनुष्य धरती का मनुष्य है जो पशु कुरुवर्ती आवेश उसके आत्मिक प्रवृत्ति को धुंधला कर देता है। अंतर में मसीह के पुरुष या स्त्री आत्मिक और सभी आवेशों के लगाम लगते हैं, संयम और नियंत्रित करते हैं और परोपकारी और स्वार्थी होते हैं। मसीह के पुरुष और स्त्री परमेश्वर के वचन को अपने पर लेते हैं, अपने आप को नकारते और उसका क्रूस उठाते हैं और सीधे और सक्रिय रास्ते पर विश्वासी, ईमानदार और उद्धारकर्ता और उसके सुसमाचार पर ध्यान लगते हुए चलते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते हम उसके पवित्र सामर्थ्य के वारिस हैं, परंतु अभी हम गिरे हुए संसार में रहते हैं, इस तत्व से बाहर जिससे हमारी शरीर की रचना की स्वाभाविकता गिरती है और सभी वस्तु पाप, घूस लेना और मौत को आकर्षित करती है। फलस्वरूप आदम का पतन और उसके आत्मिक और सांसारिक परिणाम का हम पर सीधा हमारे शरीरों पर प्रभाव करता है और हम दोहरे इंसान हैं। हमारी आत्मा के लिए वे हमारा अनंत भाग है, स्थाई शरीर में अस्थाई आवास है जो कि पतन का कारण है। जैसे यीशु में प्रेरित पौलुस से जोर देकर कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। नश्वरता की परीक्षा का सुस्पष्ट स्वभाव है, तब निम्नलिखित प्रश्नों में सारांश कर सकते हैं। क्या मैं स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य की ओर झुकाव का जवाब देता हूँ या क्या मैं पवित्र आत्मा की ओर झुकने का प्रलोभन करता हूँ और स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य को अलग करता हूँ और प्रभु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा संत बनता हूँ। यह परीक्षा है। यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सारी भूख, इच्छा, लगाव और स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य का प्रभाव से ऊपर उठाया जा सकता है। हम यहाँ धरती पर ईश्वरीय गुणों को बनाने और शरीर के सभी आवेश को लगाम लगाने में प्रगति करते हैं। पिता की योजना उसके बच्चों का नेतृत्व प्रदान करने, आनंदित होने में उनकी मदद करने और पुनरुत्थान उत्कर्ष शरीरों के साथ उन्हें वापस सुरक्षित घर जाने के लिए बनाया गया है। स्वर्गीय पिता की हमारे लिए कामना की कि हम ज्योति में इकट्ठे होंगे और आशा से भर जाएंगे। विपरीत में लूसिफर का उद्देश्य पिता के पुत्र और पुत्रियों को परेशान करने और नाखुश और अनंत प्रगति की ओर रोकने के काम में लगा रहता है। झूठों का पिता का लंगर लगने का उद्देश्य है कि हम सभी उसकी तरह आशाहीन हो जाएं। लूसिफर चाहता है हम आखिरकार अंधकार में और बिना आशा के अकेले हों। शैतान निर्दयता से पिता की योजना के अति महत्वपूर्ण तत्वों को तोड़ने मरोड़ने के काम में लगा रहता है। उसके पास शरीर नहीं है और उसकी अनंत प्रगति रुक गई है। जैसे बहते नदी के पानी को बांध बनकर रोक देते हैं, तो शत्रु की अनंत प्रगति निष्फल कर दी गई क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। उसके विद्रोही होने के कारण लूसिफर ने अपनी सारी नश्वर आशीषों और मांस और हड्डी से बने शरीर के द्वारा होने वाले अनुभवों से खुद को नकारा था। वह सबक नहीं सीख सकता जो कि सिर्फ देहधारी आत्मा सीख सकती है। वह वास्तविकता को निराश जोड़ता और सांसारिक मानव जाति के पुनरुत्थान को त्वच समझता है। घनित शब्द का एक धर्मशास्त्र का प्रभावशाली अर्थ प्रदर्शित कर उसकी नाकामियों में लगातार बढ़ती दिखाई देती है और हमारे स्वर्गीय पिता की तरह बनने में लगा रहता है। क्योंकि भौतिक शरीर पिता की आनंद की योजना का केंद्र और हमारी आत्मिक बढ़ोती है, लूसिफर हमारी प्रगति को, हमारे शरीरों को अनुचित ढंग से इस्तेमाल कर लालच द्वारा विफल करने में लगा रहता है। अनंतता का आखिरी ताना है कि विरुद्ध, जो कि निश्चित रूप से दुखी है क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं, हमारे शरीरों का गलत इस्तेमाल करने के द्वारा वह हमें अपनी दुर्गति बांटकर प्रलोभित करता है।
उसके पास ऐसा कोई औजार नहीं जो हमें लालच देकर प्राथमिकता पर निशाना लगाकर हमारी आत्मिकता का नाश करने का प्रयत्न करने का प्रयास करें। सदाचार के नियम का उल्लंघन करना और हमारे भौतिक अस्थाई आवास का दुरुपयोग करना एक दुखित पाप है। उनके लिए जो उद्धार की योजना को जानते और समझते एक विरुद्ध के विद्रोह में शरीर भ्रष्ट करते हैं और हमारी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की सच्ची पहचान को नकारता है। जैसे हम नश्वरता से पार और अनंतता में देखते, इस पर विचारना आसान है कि कपटी वकील साथी के विरुद्ध द्वारा अस्थाई और खाली है। अल्मा ने अपने पुत्र सिब्लोन को अपनी उत्तेजनाओं पर लगाम रखो जिससे कि तुम प्रेम से परिपूर्ण रहो। मध्य से स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य का अनुशासन हम में से प्रत्येक को मूल्यवान बनने, गंभीर होने और अंत तक परमेश्वर और उसके बच्चों से प्रेम करना संभव करता है। प्रेम योग्यता को खोलकर करने से बढ़ता और प्रवर्तक अति सेवन से कम होता है। अध्यक्ष मेरियन जी रोमनी घोषित करते हैं, मैं सोच सकता हूँ कोई भी आशीष उन शुद्धता और सदाचार के वादों के और अधिक इच्छा की उत्सुकता से नहीं हो सकती है। यीशु ने भिन्न भिन्न सदाचार के विशेष इनाम के बारे में बोला था, परंतु महानता को सुरक्षित रखा है। तो मुझे ये लगता है जिनके मन शुद्ध है वे, उसने कहा, परमेश्वर को देखेंगे और वे ही नहीं प्रभु को देख सकेंगे, परंतु वे उसकी उपस्थिति में घर जैसा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर उद्धारकर्ता ने वादा किया है, सदाचार के बिना किसी रुकावट के तुम्हारे विचार सजे, तब तुम दृढ़ विश्वास में परमेश्वर के सामने पक्का हो।
In the presence of family, friends, church associates, and ultimately, the Savior. Our innate longing to belong is fulfilled in righteousness as we walk in the light with hope. Some of you who receive this message need to repent of sexual or other sins. The Savior is often referred to as the Great Physician, and this title has both symbolic and literal significance.
हम सभी ने दर्द का अनुभव शरीर की चोट या घाव से किया है। जब हम दर्द में होते हैं, हम आदेश रूप में राहत को खोजते और उपचार और दवा के लिए आभारी होते हैं, जो कि हमारी पीड़ा का सहन योग्य करता है। पाप को आत्मिक घाव की तरह सोचते हैं, जो कि अपराधी होने का कारण या जैसे अल्मा ने अपने पुत्र कोरिएंटन से वर्णन करता है, अनंत करण में पश्चाताप करने की भावना, हमारी आत्मा में गुनहगार की भावना होना, हमारे शरीर में क्या दर्द हो देता है, खतरे की चुनौती और अतिरिक्त नाश से सुरक्षा की। उद्धारकर्ता का प्राश्चित नर मलहम की तरह होता है, जो कि हमारे आत्मिक घाव को चंगा और गुनाह से मुक्त करता है। इसलिए इस मलहम को प्रभु यीशु मसीह के नियम में विश्वास के पश्चाताप और लगातार अज्ञाकारी होने के द्वारा लगा सकते हैं। ईमानदारी से पश्चाताप करने से आत्मा में शांति, आराम और आत्मिकता की चंगाई और नवीनीकरण होता है। आपके धर्म में अध्यक्ष या शाखा अध्यक्ष आत्मिक वैद्य के सहायक होते हैं, जिनको अधिकार दिया है कि आपके पश्चाताप और चंगा करने में मदद करने को। कृपया याद करें, यद्यपि आपके पश्चाताप की विस्तारता और एकरता आपके पापों की गंभीरता और प्रकृति से मेल खाता हो, विशेषकर अंतिम दिनों के संतों के लिए जो पवित्र अनुबंध के अंतर्गत होते हैं, गंभीर आत्मिक घाव का उपचार और समय से पूरी चंगाई की जरूरत होती है। जिस सिद्धांत को मैंने वर्णन किया है, प्राचीन काल का और संसार से बहुत से लोगों के लिए बेकार का है, जो जननन की पवित्रता और मानव जीवन के योग को कम कर लगातार मजाक उड़ाते हैं। परंतु प्रभु की सच्चाई धुंधली अलोकप्रिय लोगों के परामर्श वोट को कम नहीं होती। मैं वादा करता हूँ कि सदाचार के नियम की अज्ञाकारिता हमारे आनंद को नश्वरत में बढ़ते हैं और हमारी अनंतता में प्रगति करने में संभव करते हैं। शुद्धता और सदाचार अब से, हमेशा से था और हमेशा रहेगा सबसे प्रिय और अमूल्य चीज है। मैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाही देता हूँ, आमीन।
We are grateful for all who have spoken.
हम उन सबका जिन्होंने आज दोपहर हमारा संबोधन किया और ब्रिगम यंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की गायक मंडली का सुंदर संगीत प्रदान करने के लिए आभारी हैं। हम भाइयों को याद दिलाते हैं कि पुरोहित महासभा सम्मेलन केंद्र में आज शाम 6 बजे होगी। मंडप गायक मंडली का राष्ट्रीय प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 बजे तक होगा। इसके तुरंत बाद रविवार प्रातकालीन सत्र होगा। अब हम 12 पीड़ितों के परिषद के एल्डर रसल एमनेंसिस को सुनेंगे। उनके संदेश के पश्चात गायक मंडली मोर होलीनेस गिव मी गाकर सभा का समापन करेंगे। इसके पश्चात 70 के एल्डर जे डेवन कॉर्निश समापन प्रार्थना करेंगे।
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एड
माय प्रिय भाइयों और बहनों, अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन और अन्य के साथ मैं उनकी प्रशंसा में अपनी जो आवाज जोड़ता हूं, जिन्होंने भविष्यवक्ता के अधिक योग्य प्रचारक के आह्वान का जवाब दिया है। अब प्रचार कार्य के लिए जोश की अद्भुत लहर संपूर्ण पृथ्वी पर चल रही है। पिछले अक्टूबर में अध्यक्ष मॉनसन की एक ऐतिहासिक घोषणा के बाद हजारों एल्डर बहनों और दंपतियों को नियुक्त किया गया और बहुत से तैयार कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन प्रचारकों के साथ हम क्या करेंगे। उत्तर समान है, वे वही करेंगे जो प्रचारक हमेशा से करते आए हैं। वे सुसमाचार का प्रचार करेंगे, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चों को आशीषित करेंगे। आप में से बहुत से युवक और युवतियां इस लहर को थाम लेंगे। जब आप मिशन की नियुक्ति के लिए योग्यता से प्रयास करते हैं, आप इस लहर को सच्चाई और धार्मिकता के रूप में देखते हैं। आप अपने अफसर को इस लहर के शिखर पर होना देखने देते हैं। आप किशोर किशोरियां अपने नए पाठ्यक्रम को गले लगाओ और एक दूसरे को यीशु मसीह का सिद्धांत सिखाओ। आप दूसरों को परमेश्वर की अच्छाइयों के बारे में सिखाने की अपनी तैयारी करने का समय है। युवकों और युवताओं, हमारे लिए, आपके लिए और हमारे परमेश्वर के लिए आपके शिक्षा से महत्वपूर्णता रही है। जहां भी संभव हो, यदि आप अपने मिशन के बाद किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि मिशन आरंभ करने से पहले अपनी पसंद का कॉलेज या विश्वविद्यालय का चुनाव कर लें। उच्च शिक्षा के बहुत से संस्थान प्रशिक्षित प्रचारों और 18 से 30 महीने के विलंब की अनुमति देते हैं। अपने एल्डर और बहनों अपनी इच्छा उच्च शिक्षा से निश्चित होकर सेवा करते हैं। आपके माता पिता, शिक्षक और दूसरे इस लहर को पकड़ने के तौर पर हमारी उभरती पीढ़ी को योग्य प्रचारक सेवा के लिए तैयार करो। इस बीच अपने जीवन के उदाहरण आपके मित्रों और पड़ोसियों को आकर्षित करेंगे। जो आशा और आनंद वे आपके अंदर देखते हैं, उनका कारण बताने के लिए तैयार रहें। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप यह कहकर जवाब दे सकते हैं, आपको प्रचारकों से पूछें, वे हमारी मदद करते हैं।
They will help us. And if you desire,
और यदि हम चाहते हो तो प्रचारक के जवाब और सीखते समय मैं आपके साथ रहूंगा। आप वैसे भविष्य के प्रचारक की आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक मदद कर के लहर को पकड़ो। थोड़ा थोड़ा धन बचाना अपनी आदत का हिस्सा बना सकते हैं। आप वरिष्ठ दंपत्य अपने मिशन पर जाने के लिए योजना बनाएं। हम आपकी सेवा के लिए बहुत आभारी रहेंगे। तब तक आपसे कुछ जर्नल प्रचारक कोष में योगदान दे सकते हैं, जैसा अध्यक्ष मॉनसन ने सुझाव दिया है। चुने हुए पुरुष और अपने प्रिय जीवन साथी की बढ़ती हुई संख्या इस लहर को पकड़ती है। जब हमारे गिरजे के मिशन की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है, इस सेवा में वे जन्मी और अजन्मी पीढ़ी के भविष्य को स्वरूप देंगे। मिशन अध्यक्ष अपने प्रचारकों के कल्याण, सुरक्षा और सफलता की कुंजियों के धारण करते हैं। अपने मिशन के स्टेक और जिला अध्यक्षों से सलाह करके प्रत्येक मिशन अध्यक्ष प्रचारकों को विशेष स्टेक, वार्ड और शाखाओं में सेवा के लिए नियुक्त करते हैं। भविष्य के प्रचारक के साक्षात्कार में अधिक से अधिक घंटे व्यक्ति व्यतीत करें। स्टेक और अध्यक्ष और धर्मध्यक्ष इस लहर को पकड़ें। यह प्रवृत्ति मार्गदर्शक अपनी इकाइयों में प्रचारक कार्य की कुंजियों को धारण करें और वे सदस्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। भाइयों और बहनों, प्रत्येक वार्ड परिषद इस लहर को पकड़ना आरंभ कर रही है। इस परिषद में वार्ड मिशन मार्गदर्शक होता है। मैं विशेष रूप से आप वार्ड मिशन मार्गदर्शकों को बोलना चाहता हूं। आपको अपने धर्मध्यक्ष के द्वारा वार्ड में प्रचार कर कार्य के लिए निश्चित किया जाता है और आपसे में से कुछ इतने सफल हैं कि आपकी मदद के लिए एक सहायक नियुक्त किया गया है। वार्ड परिषद से दूसरों के अलावा आप कम सक्रिय सदस्यों, आशीष आशंकित सदस्य परिवारों और इच्छुक पड़ोसियों को पहचाने। आप नियुक्त पूरे समय के प्रचारकों से नियुक्ति नियमित रूप से मिलें। प्रचारकों को सलाह और सहायता दें। कृपया अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को केंद्रित और महत्वपूर्ण सीखने के अवसरों से भरें। आप अपनी जिम्मेदारी है। इस काम को सफलता में आपकी भूमिका महत्व है। यदि आप विश्वास और जोश से लहर और को थामेंगे, दूसरों को भी ऐसा करेंगे। आप वार्ड मिशन मार्गदर्शक के रूप में परमेश्वर के बच्चों को बचाने के लिए पवित्र कार्य में सदस्यों और प्रचारकों के बीच एक कड़ी हो। हमारे पूछताछ करने वाले मित्र और पड़ोसी जो कि हमारे विश्वास के नहीं हैं, इस लहर को थाम सकते हैं। हम उनको उत्साहित करते हैं कि वह सब जो उनके जीवन में अच्छा से और सच्चा है उसके साथ रखें और हम उनके अधिक पाने का निमंत्रण देते हैं। विशेषकर यह आनंद के सच्चाई के कि परमेश्वर की अनंत योजना के द्वारा भविष्य हमेशा के लिए एक साथ रह सकता है। सच्चाई और धार्मिकता की लहर अभूतपूर्व है। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई है। यह प्रभु में आई है जिसने कहा था, मैं उचित समय में अपने कार्य को शीघ्रता से करूंगा। यह लहर 193 वर्ष पूर्व की गई दिव्य घोषणा से सशक्त है। इसमें केवल 7 शब्द शामिल हैं। यह है, मेरा पुत्र है, इसको सुनो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा कहे गए इस घोषणा से युवक जोसेफ स्मिथ का परिचय यीशु मसीह से कराया था। उन 7 शब्दों ने उसके सुसंचार को आरंभ किया था, क्योंकि हमारा प्रेमी परमेश्वर एक प्यार करने वाला है। वह चाहता है कि हम उसे यीशु मसीह को जाने और जिसे उसने भेजा था, और वह चाहता है कि बच्चे अमर और आनंद जीवन प्राप्त करें। इस अद्भुतपूर्व उद्देश्य के लिए हमारे प्रचारक पुनर्स्थापना की शिक्षा दी थी। वे जानते थे कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व
Then, after generations of spiritual darkness,
फिर आत्मिक अंधकार के योगों के पश्चाताप और जैसा कि प्राचीन भविष्यताओं की भविष्यवाणी की थी, स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह के गिरजे इसके सिद्धांत और पुरोहित अधिकारी को पुनस्थापित किया। उन पुनस्थापना के कारण ज्ञान और उद्धार और उत्कर्ष के लिए आवश्यक धर्म विधियां सभी लोगों को उपलब्ध हैं। अंततः यह उत्कर्ष हम में से प्रत्येक को अपने पवित्र परिवार के साथ परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में हमेशा के लिए निवासी करने की अनुमति देता है। मैं पुनर्साधना के बारे में ऊंचे स्वर में नहीं बोल सकता। इतिहास की यह सच्चाई नितंत आश्चर्यजनक है, यादित्य है और यह साधारण है। यह किंतु अद्भुत है कि स्वर्ग में के संविधक इस कार्य को अधिकार और शक्ति देने आए थे।
Christ made multiple appearances to the prophet Joseph Smith. Under their direction, other heavenly messengers came, each with a specific purpose. For example, the angel Moroni revealed.
उदाहरण के लिए स्वर्गदूत मोरोनी ने मॉर्मन की पुस्तक को प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हारूनी पुरोहित को पुनर्स्थापित किया। पत्रस, याकूब और यूहन्ना के मेलकिसेदेक पुरोहित को पुनर्स्थापित किया। मूसा ने इसराइल को एकत्रित करने के लिए कुंजी प्रदान की। एलिशा ने इब्राहिम को ज्ञान की कुंजी प्राप्त की। एलिजा ने मोहरबंदी के अधिकार की कुंजी प्राप्त की। इसके अलावा पुनर्स्थापना ने संतों के प्राचीन ज्ञान में अतिरिक्त ज्ञान जोड़ा था। पवित्र बाइबल के साथ उसने मार्मन की पुस्तक यीशु मसीह का अन्य नियम जोड़ा था। यह भविष्यवाणियों और प्राचीन अमेरिका के लोगों के पुनर्जीवित प्रभु की सेवकाई का अभिलेख है। उद्धार की योजना की व्याख्या करती है। मार्मन की पुस्तक बाइबल के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। दोनों पवित्र अभिलेख यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई और उसके परिचय के महत्व को स्वीकार करते हैं। पुनर्स्थापना बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियों को पूरा करती है। उदाहरण के लिए यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु का घर पर्वतों की चोटियों पर स्थापित किया जाएगा। पश्चिमी अमेरिका के पर्वतों के को मार्वन पथ दर्शकों का निर्गम बलिदान और विश्वास की परिपूर्ण गाथा है। यशाया ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्यजनक काम करेगा। यह हम हमारे प्रचारों की बढ़ती संख्या के पवित्र काम के द्वारा पूरी हो रही है। दशम के बारे में पुराने नियम में सिखाए शिक्षाओं को पुनर्स्थापित किया गया है। मेलकिसेदेक के संदर्भ में पुनर्स्थापना के धर्मशास्त्रों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। भविष्यवाणों की जोसेफ की लकड़ी यहूदा की लकड़ी परमेश्वर के हाथ में एक होगी अब पूरी हो गई है। पुनर्स्थापना नए नियम धर्मशास्त्रों को भी स्पष्ट करती है। मित्र के लिए बपतिस्मे के संदर्भ अब अच्छी तरह समझे गए हैं। हम मित्र पूर्वजों के लिए धर्म विधियां अब प्रतिनिधि के रूप में विश्व भर में 141 मंदिरों की जा सकती है।
John the Revelator's vision of another angel.
यूहन्ना के दिव्य दर्शन एक स्वर्गदूत आकाश के बीच उड़ते हुए दिखाई दिया जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अनंत सुचमार था। ने स्वर्गदूत मोरोनी के मिशन और मार्मन की पुस्तक की भविष्यवाणी की थी। मार्मन की पुस्तक पुनर्स्थापना का मुख्य बिंदु है। इसे प्रभु के निर्देशन के अंतर्गत लिखा, सुरक्षित रखा और भेजा गया। इसका अनुवाद परमेश्वर के उपहार और शक्ति द्वारा किया गया था। सिद्धांत और अनुबंध की पुस्तक में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को दिए बहुत से अतिरिक्त प्रकटीकरण हैं। उसके द्वारा हमें किसी भी अन्य भविष्यवक्ता से अधिक धर्मशास्त्र के पृष्ठ प्राप्त हुए हैं। एक बार जो कि भविष्यवक्ता मैंने कभी नहीं कहा कि मैं परिपूर्ण था, लेकिन जो प्रकटीकरण मैंने सिखाए हैं उनमें कोई त्रुटि नहीं है। सदस्य और प्रचारक मिलकर सभी को परमेश्वर यीशु मसीह और उनके सुसमाचार के विषय में सिखाने का निमंत्रण देते हैं। प्रत्येक पूछताछ करने वाले व्यक्ति को इस बातों की सच्चाई में आश्वासन देने की निष्ठा और प्रार्थना करनी चाहिए। मैं परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह का पुनर्स्थापना और संपूर्ण पृथ्वी पर सच्चाई और धार्मिकता की अद्भुत पूर्व लहर की गति देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम सब इस लहर को थामे और प्रत्येक राष्ट्र और जाति और भाषा और लोगों के बीच सुसमाचार जाने के प्रभु के आदेशों को पूरा करें। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
Oh.
our holy and eternal Father in heaven.
हमारे अनंत पवित्र पिता परमेश्वर, हम आप सबका आपके पवित्र पुत्र के लिए, आपके दया के लिए, आपके विशेषकर आपके पुत्र जीसस क्राइस्ट के लिए, जब हम आज जीवित प्रेरणाओं प्रेरितों द्वारा गाइड किए गए, जो कुछ भी बातें हमने रिसीव करी हैं, अपने दिमागों और मनों को खोलें और जो हमें सिखाया गया उसको हम सीखें, पश्चाताप करें और बदलाव करें, जैसे आप चाहते हैं वैसे हम बने। हमारे संग जब हम दोबारा एकत्रित होते हैं, हमारे संग रहे। ये सब कुछ हम मांगते हैं पवित्र नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 180th.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 113वीं वार्षिक महासम्मेलन था। इस गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए व्यक्तियों ने संबोधन किया था। संगीत ब्रिगम यंग विश्वविद्यालय के सम्मानित गायक मंडली द्वारा दिया गया था। इसका प्रसारण बॉनीविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।